समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
किसी भी मामले में हस्तक्षेप करना, अच्छी चीज की प्रशंसा करना और किसी भी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देना मानव व्यवहार का अभिन्न अंग है। लेकिन बस जरा सा ख्याल रखना जरूरी है कि हस्तक्षेप बुद्धिमानी से, प्रशंसा दिल से और प्रतिक्रिया विवेक से देना ही समझदारी है, वरना हस्तक्षेप करने वाला आलोचना का पात्र बन जाता है, दिल से प्रशंसा न करने वाला चापलूस कहलाता है और अविवेक से दी गई प्रतिक्रिया अक्सर झगड़े का कारण बन जाती है। किसी को समझाना तो देखिए हमारे हाथ में है नहीं, इसलिए कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना ही उचित होता है और संतुलित तरीके से इन तीन बिंदुओं पर अमल करने से हम खुद भी सुकून की जिंदगी बसर कर पाते हैं। यानी कि हस्तक्षेप बुद्धिमानी से करें, प्रशंसा दिल से करें और प्रतिक्रिया विवेक से दें। इसी सोच के साथ आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरी साथी अनीता आनंद। आपकी सुबह कैसी है अनीता आज?
All very good. It's getting chillier by the day. So, good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. We bring you our ever-exciting daily news magazine, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we shall bring you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 16th of December. So let's begin with the headlines first, Naeem.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पहल करने को कहा है। कल नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने अनुपालन को सरल बनाने को कहा ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मुख्य सचिवों से राज्यों को जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शासन के मॉडल में सुधार करने को कहा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही आम लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करना भी महत्वपूर्ण है। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की सराहना की कि गोबरधन कार्यक्रम को अब बड़े ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने पाया कि यह पहल अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करने के साथ ही वृद्ध मवेशियों को दायित्व के बजाय संपत्ति बनाती है। उन्होंने राज्यों को ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की अवधारणाओं का पता लगाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मोटापे को देश में बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिट और स्वस्थ भारत ही विकसित राष्ट्र हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के 13 से 15 दिसंबर तक 3 दिवसीय सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि भारत के सेवा क्षेत्र के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड टू बिल्स रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन फॉर इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा टुडे। Law Minister Meghwal will introduce the Constitution 129th Amendment Bill and the Union Territories Laws Amendment Bill in the lower house. Union Cabinet, headed by Prime Minister Narendra Modi on Thursday, approved the Constitutional Amendment Bill to roll out the concept of simultaneous Lok Sabha and State Assembly polls.
विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 22,766 करोड़ रुपए और ऋण बाजारों में 4,814 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये पिछले कुछ महीनों में भारी निकासी के बाद हुआ है। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए की निकासी की थी। सितंबर में एफपीआई प्रवाह के लिए 9 महीने का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया था, जिसमें 57,724 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ था। इस साल अब तक एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजारों में 1,20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
A two-day special debate on the Constitution will begin today in Rajya Sabha to mark the beginning of 75th year of its adoption in the country. A similar debate was held in Lok Sabha on Friday and Saturday. Prime Minister Narendra Modi is expected to reply to the debate in Rajya Sabha tomorrow. The BJP has issued a 3-line whip for all its Rajya Sabha MPs, urging them to be present in the upper house today and tomorrow during the debate on the Constitution of India. On November 26, 1949, the Indian Constituent Assembly formally adopted the Constitution, which came into effect on January 26, 1950, establishing India as a sovereign democratic republic. In 2015, Modi government formally declared November 26 as Constitution Day, Samvidhan Divas, to honor the adoption of the Indian Constitution in 1949.
महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू होगा, जिसमें मंत्री परिषद में नए शामिल किए गए मंत्रियों का परिचय और इस वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों को पेश किया जाएगा। सत्तारूढ़ महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल हुआ, जिसमें 39 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा 16 कैबिनेट मंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री पद की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद शिवसेना के 9 कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8 कैबिनेट मंत्री हैं। कल नागपुर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि इस सत्र में कुल 20 विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने परभणी और बीड में हिंसक घटनाओं के साथ साथ संविदा रोजगार और विधानसभा सत्र के छोटे कार्यकाल जैसे मुद्दों को लेकर कल सरकार द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया है।
Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani on 29th of December. It will be the 117th episode of the monthly radio program. People can submit their ideas and suggestions for the program through the toll-free number 1-800-117-800. People can also share their inputs online via the Narendra Modi app or MyGov open forum. Suggestions for the upcoming episodes will be accepted till the 27th of this month. The program will be broadcast on the entire network of Akashvani and Doordarshan, AIR News website and News on AIR mobile app.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर आउटलुक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत से दोनों देशों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और विश्वास तथा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि उनकी बातचीत भारत श्रीलंका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेशों के अवसरों को बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी। श्री दिसानायके ने कल नई दिल्ली पहुंचने पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने उनका स्वागत किया। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। वो बिहार के बोधगया भी जाएंगे।
To make the 100th celebration of Tansen Music Festival memorable, a Guinness Book of World Record was created by playing 9 musical instruments simultaneously for 9 minutes in the music city of Gwalior in MP. A total of 536 male and female artists from Madhya Pradesh and the country participated in this presentation. A musical tribute was paid to the King of Voices Tansen through a collective presentation. The presentation included 3 ragas composed by Tansen, Malhar, Miyan Ki Todi and Darbari Kanara. This presentation was coordinated by the famous flute player Pandit Ronu Majumdar. The group presentation included 9 musical instruments as well as vocal. The musical instruments included tabla, flute, violin, santoor, sarod, sarangi, sitar, banjo and harmonium. Chief Minister Dr. Mohan Yadav, Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya and Assembly Speaker Narendra Singh Tomar were also present in the program. Tansen Samaro is organized by the Culture Department of Madhya Pradesh. On to sports in hockey. India won the Women's Junior Asia Cup 2024 championship in Muscat, Oman last night. Indian team defeated China 3-2 in a penalty shootout to successfully defend its title. We have a detailed report on India's stellar performance in hockey.
In the penalty shootout of Women's Junior Asia Cup 2024 final, Indian goalkeeper Nidhi made three crucial saves, while Sakshi Rana, Ishikai and Sonalita Topo striked in the shootout to bring the trophy home. Earlier, Jinzhuang Tran scored the opening goal for China, but Kanika Sivaj equalized in the third quarter for India. Lauding the efforts of Women in Blue, Hockey India has announced a reward of 2 lakh rupees for each player and 1 lakh rupees to each of the support staff. India's Deepika Sehrawat, with 12 goals, remained the top scorer of the tournament. Last year, India defeated Republic of Korea to clinch its maiden title in the tournament. Moving on to domestic cricket, Mumbai has won the Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 last night after registering a 5-wicket victory over Madhya Pradesh at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. Opting to bowl first, Mumbai restricted Madhya Pradesh to 174 for 8 in stipulated 20 overs before chasing down the target in just 17.5 overs. Suryakumar Yadav scored a quick 48 off 35 balls for the winning side. For Madhya Pradesh, Rajat Patidar remained the top scorer with 81 runs. Suryan Setge has won the Player of the Match award in the finals for his overall performance, while Mumbai's Ajinkya Rahane was named the Man of the Series. For Akashvani News, Om Vesh Upadhyay, Sports Desk.
और अनिता, अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें ले लेते हैं।
We begin with Chennai. The regional Met department has predicted rainfall in some parts of the southern districts of the state on 17th and 18th of December. Fishermen have been advised not to venture into the west central Arabian Sea, also near Comorin area and Gulf of Mannar.
दिल्ली से मेरे पास दो खबरें हैं अनिता। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का कल चौथा दिन था। इसमें 20 राज्यों के लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आयोजन देश भर के दिव्यांग शिल्पकारों, उद्यमियों और कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। दिव्य कला मेला में कई प्रकार के उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई का काम, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी और जीवन शैली से जुड़े सामान उपलब्ध हैं। इनके अलावा गृह सज्जा, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद, खिलौने, उपहार, आभूषण और क्लच बैग समेत कई अन्य अनूठी वस्तुओं की भी भारी मांग देखी जा रही है। मेले में सांस्कृतिक उत्सव एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। वहीं मेले में विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी उपलब्ध हैं, जहां आगंतुक देश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। 11 दिवसीय ये मेला 22 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें प्रवेश निशुल्क है।
And on to Bengaluru. With the recent drop in temperature and fluctuating weather, respiratory infections are on the rise in the city, including walking pneumonia caused by the bacteria Mycoplasma pneumoniae. Known as walking pneumonia for its milder symptoms, it can still show prominent patches on chest x-rays. It commonly affects the children, young adults, the elderly, and individuals with conditions like asthma or COPD. Those with weakened immune systems due to medications like steroids or history of smoking are at a greater risk. The Bengaluru Mahanagar Palike, BBMP, is conducting a survey to register street vendors across various zones in Bengaluru. As of now, 23,407 vendors have been identified using a mobile-based technology platform. The survey, which aims to streamline the identification and support of street vendors, is scheduled to conclude on 20th of December. Street vendors failing to register by the deadline will not be eligible for any government benefits, and no further registrations will be accepted after December 20.
मुंबई की तरफ रुख करें तो मुंबई के निकट पालघर जिले में सिकल सेल रोग से पीड़ित 1600 से अधिक लोगों में सिकल सेल रोग की पुष्टि हुई है, जबकि इस रोग पर नियंत्रण के लिए चलाए गए चिकित्सा अभियान में 24,288 अन्य लोग इस रोग के वाहक पाए गए हैं। ये चिकित्सा अभियान जिले में 11 से 17 दिसंबर तक मनाए जा रहे सिकल सेल जागरूकता सप्ताह का हिस्सा है, जिसमें अब तक 13,96,000 से अधिक लोगों में सिकल सेल रोग की पुष्टि हुई है। मरीजों को दी जाने वाली सहायता के बारे में बात करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी संतोष चौधरी ने कहा कि सिकल सेल रोगियों को संजय गांधी निराधार योजना के तहत वित्तीय लाभ दिया जाता है, जिसमें मरीजों की काउंसलिंग के अलावा मुफ्त दवा, उपचार और रक्तदान शामिल है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा के दौरान प्रत्येक पेपर के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। सिकल सेल रोगियों को बस यात्रा में भी छूट दी जाती है।
And Telangana name is reeling under severe cold wave conditions, with most of the districts recording minimum temperatures below 10 degrees Celsius for the past 3 days. This marks a sharp dip compared to the previous days, when only 5 to 10 districts experienced such low temperatures. According to data from the Telangana State Development Planning Society, Chandra village of Nirmal district recorded the lowest minimum temperature of 6.3 degrees Celsius in the state this morning, while Pochara of Adilabad recorded the minimum temperature of 6.4 degrees Celsius. The Met Department officials issued a cold wave alert as over 15 districts out of 33 recorded the minimum temperatures below 10 degrees Celsius continuously for 3 days.
चलिए बाकी महानगरों के भी मौसम के बारे में जानेंगे, लेकिन जरा सी देर में अभी मेरे पास कोलकाता से एक बहुत खास खबर है। भारतीय सेना आज विजय दिवस मना रही है। ये दिन हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूर्वी कमान कोलकाता में क्षेत्रीय मुख्यालय फोर्ट विलियम्स में विजय स्मारक पर बहुत हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर राज्यपाल डॉ सी वी आनंद बोस भी मौजूद रहेंगे। मुक्ति युद्ध में भाग लेने वाले 1971 के युद्ध के दिग्गज भी बांग्लादेश के कुछ प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि बाकी महानगरों के मौसम के बारे में भी बात करेंगे, तो वक्त आ गया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में मौसम साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees and the maximum will be around 30 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have general mist. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and the maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between the minimum of 14 and the maximum of 29 degrees Celsius.
और 16 दिसंबर के इतिहास पर एक नजर डालने का वक्त है। 16 दिसंबर 1707 को जापान के माउंट फ्यूजी पर्वत में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसी दिन 1824 में ग्रेट नॉर्थ हॉलैंड नहर खोली गई थी। 1862 में नेपाल ने संविधान को अपनाया। 1889 में ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम और रानी मेरी ने स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी।
And in the year 1921, Calcutta Electric Supply Corporation started tunnel construction under the Hooghly River. And in the year 1922, Parvati Devi, orator, was arrested for delivering revolutionary speeches in meetings at Hapur and Meerut. She was the first Indian woman to get 2-year-long imprisonment during the freedom struggle. In 1951, Salar Jung Museum opened in Hyderabad.
1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना, और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, आज ही के दिन इसी वजह से विजय दिवस भी मनाया जाता है।
एंड इन द ईयर 1998 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा द पेटेंट्स अमेंडमेंट बिल 1998 अमिड लेफ्ट प्रोटेस्ट्स। इन द ईयर 1999 बिल ऑन साइबर लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। In the year 2000, Kalyan Banerjee became the first Indian to head the Rotary Foundation, one of the richest bodies of the Rotary International. Rotary International provides service to others, promotes integrity and advances world understanding, goodwill and peace through fellowship of business, professional and community leaders.
और 2004 में दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो ये तो बात हुई आज के दिन के इतिहास की, यानी कि 16 दिसंबर में क्या क्या हुआ पूरी दुनिया में। अब 16 दिसंबर में और भी बहुत कुछ होता है। हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन कुछ ऐसी हस्तियां, महान हस्तियां रही जिन्होंने जन्म लिया इस दुनिया में और कुछ हमें अलविदा कह गई, तो उनको याद कर लेते हैं।
जी,
सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी. उनकी आज पुण्यतिथि है और वजह वही है कि उनकी शहादत आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को हुई थी. परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल. उन्हें यह सम्मान 1971 में मरणोपरांत मिला था. 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से छूटकर एक स्वतंत्र देश की तरह जन्मा भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. ये युद्ध 17 दिसंबर 1971 तक चला. इसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई. वो न सिर्फ हार गया बल्कि उससे टूटकर उसका राज्य पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्मा जो बांग्लादेश कहलाया. इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उन्हीं में से एक हैं.
Today is the birth anniversary of Jane Austen, born on this day in 1775. The English novelist her novels implicitly interpret critique and comment upon the English landed gentry. At the end of the 18th century, and Austen's plots often explore the dependence of women on marriage for the pursuit of favorable social standing and economic security. Her works are implicit critiques of the novels of sensibility of the second half of the 18th century and part of transition to 19th century literary realism. Her use of social commentary, realism, wit, and irony have earned her acclaim amongst critics and the scholars. The anonymously published Sense and Sensibility, Pride and Prejudice came out in 1813, Mansfield Park 1814, and Emma 1816 were modest successes, but they brought her little fame in her lifetime. She wrote two other novels, Northanger Abbey and Persuasion, both published posthumously in 1817. I am playing a snippet from first her Pride and Prejudice, the Hollywood movie made of the same name, followed by a snippet of a song from the Indian movie, which was based on her novel.
पतंग देख लो ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर को है कुड़ी भी पतंग देख लो ए कुड़िया कुड़िया
मुझे अनीता दिखाई दे रहा है कि रेडियो के पार हमारे श्रोताओं के पैर जो हैं वो थिरक रहे हैं.
Absolutely, the song is such.
आपने संगीत की एक सफर की शुरुआत की है तो मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ. हमारे वो सभी श्रोता जो कव्वालियां पसंद करते हैं, हमारे वो सभी श्रोता जो हिंदी फिल्मों में संगीत को पसंद करते हैं और खासतौर पर संगीत को ही पसंद करते हैं, उनके लिए शकीला बानो का नाम बिल्कुल भी अनजान नहीं होगा, जिन्हें शकीला बानो से ज्यादा शकीला बानो भोपाली के नाम से जाना जाता है और उन्हीं की आज पुण्यतिथि है. शकीला बानो भोपाली भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध कव्वाल है. भारत की मैंने इसलिए कहा कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़े हैं. भोपाल में उनका जन्म हुआ था तो भोपाल की पहचान शकीला बानो को भारत की पहली महिला कव्वाल होने का दर्जा भी प्राप्त है. बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों और उसके बाद स्टेज पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिला था. शकीला बानो की प्रसिद्धि, जैसा कि मैंने कहा कि भारत से बाहर भी है, तो पूर्वी अफ्रीका, इंग्लैंड, कुवैत जैसे देशों में भी उन्होंने अपने कार्यक्रम पेश किए हैं. और जो हमारे श्रोता कव्वालियां पसंद करते हैं, जिन्हें शकीला बानो भोपाली की आवाज पसंद है, वो यकीनन इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे कि किसी कव्वाली का कोई एक छोटा सा टुकड़ा जरूर हम उन तक पहुंचाए.
And born on this day was Sir Arthur Clarke, Charles Clarke, the British science fiction writer, science writer, futurist, inventor, undersea explorer and television series host. He co-wrote the screenplay for the 1968 film 2001, A Space Odyssey, widely regarded as one of the most influential films of all time. Clarke was a science fiction writer, an avid popularizer of space travel and a futurist of a distinguished ability. He wrote many books and many essays for popular magazines 1961, he received the Kalyang Prize, a UNESCO award for popularizing science, and Clark's science and science fiction writers earned him writings earned him the moniker of Prophet of the Space Age. His science fiction writings in particular earned him a number of Hugo and Nebula awards, which along with a large readership made him one of the towering figures of the genre.
आज जयंती है राय बहादुर दयाराम साहनी की. ये भारत के बेहद प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे. 1921 से 1922 के बीच में प्राचीन हड़प्पा नगर की खुदाई का कार्य उन्हीं के नेतृत्व में किया गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान है. जॉन मार्शल के सहायक के रूप में 1931 में दयाराम साहनी पहले भारतीय बने जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया. 1935 तक वो इस पद पर रहे और लगभग एक साल के बाद 1922 में राखालदास बैनर्जी ने खुदाई के समय एक और स्थान का पता लगाया था. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम पर हमेशा के लिए लिख दी गई है.
जी, एंड today is the death anniversary of Prem Nazir, William Frederick Gibbons was born on this day in 1949. Is an American rock musician best known for the guitarist and primary vocalist ZZ Top. He began his career in Moving Sidewalks, who recorded Flash 1969 and opened four dates for the Jimi Hendrix Experience. Gibbons formed ZZ Top in late 1969 and released ZZ Top's first album in early 1971. He also maintained a solo career in recent years, starting with his first album, Perfectimundo, which came out in 2015. Gibbons has made appearances with other artists and acted on television shows, most notably in a recurring role as Angela's rock star father on Bones. In 2001, Rolling Stone named him 32nd greatest guitarist of all time.
और आज पुण्यतिथि है रूप सिंह की, महान हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह, जिनका जन्म 8 सितंबर 1908 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ और उनकी कर्म भूमि हमेशा ग्वालियर ही बनी रही. उनकी स्टिक से निकले गोलों ने भारत को दो बार 1932 और 1936 में ओलंपिक का स्वर्ण मुकुट पहनाया. लॉस एंजलिस ओलंपिक में 4 अगस्त को पहले मैच में भारत ने जापान को एक तरफा मुकाबले में 11-1 से हराया. इस मैच में 4 गोल ध्यानचंद ने किए जबकि 3 गोल रूप सिंह की स्टिक से निकले. दूसरा मैच मेजबान 8 अगस्त को अमेरिका से था. भारत ने इस मैच में अमेरिका को उसी के दर्शकों के सामने 24-1 से बुरी तरह धो डाला. इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए, लेकिन पहली बार ध्यानचंद को गोल ठोकने में अपने भाई रूप सिंह से यहां मात मिली, क्योंकि रूप सिंह ने 10 गोल ठोके. अपने पहले ही ओलंपिक में 13 गोल करने वाले रूप सिंह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे और भारत दूसरी बार हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुआ. 1932 के ओलंपिक में भारत ने कुल 35 गोल दागे और सिर्फ 2 गोल खोए थे. और आज ही अनीता जयंती होती है हवा सिंह की, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन की तो एक और नाम भी मेरे सामने है. हवा सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे. हवा सिंह ने सालों तक मुक्केबाजी के खेल को नई दिशा दी और देश का नाम रोशन किया. पहले बॉक्सर के रूप में देश की सेवा की और बाद में अंत तक इस खेल से जुड़े रहे. 1966 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया इन्हें और 1968 में थल सेना अध्यक्ष द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान की गई और 1999 में हवा सिंह के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार घोषित किया गया.
एंड टुडे नेम इज आल्सो द बर्थडे ऑफ हर्षदीप कौर, बोर्न ऑन दिस डे इन 1986. शी इज नोन एज द सूफी की सुल्ताना बिकॉज ऑफ हर सोलफुल सूफी रेंडिशंस. आफ्टर विनिंग टाइटल्स इन two reality shows, Kaur established herself as a lead singer in Bollywood soundtracks. Kaur was 16 years old when she released her first Bollywood song, that is Sajna Mehari. She has recorded songs for film music in multiple languages, including Hindi, Punjabi, Malayalam, Tamil, Urdu, and has established herself as a leading playback singer of Indian cinema. I am playing a song sung by her, Dilbar.
Baba, main teri malika टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे.
मुड़ के ना देखो दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिल.
तो अनीता आपने ठान रखी है अपने श्रोताओं को एक से एक म्यूजिक
अच्छे अच्छे गाने सुनाने की ना,
लेकिन देखिए वक्त नहीं है, आप इससे ज्यादा नहीं सुनवा सकती हैं, अब विदा लेने का वक्त हो गया श्रोताओं से, तो अनुमति दीजिए नईम अख्तर और अनीता आनंद को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे,
नमस्कार।